यदिदं च जगत् सर्वं प्राण एवेति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं यः एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज ने इस मंत्र के प्रारंभ में एक प्रश्न उठाया, इस संसार के प्रति कारण कौन है। बहुत सारे लोग इस विषय में विचार करते हैं, बौद्ध मत में इस संसार के प्रति कारण असत माना है, सांख्यों ने सत माना है, न्यायिकों ने असत माना है और वेदांति ने इस संसार के प्रति कारण न मानकर अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को माना है और कारण रूप से अविद्या को स्वीकार किया। वो सत्य हैं लेकिन वो व्यावहारिक सत्य हैं। कल एक बड़ा सुंदर प्रसंग हम लोग उठा रहे थे, परिणाम और विवर्त की चर्चा कर रहे थे। ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये अविद्या का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है। चैतन्य माने अधिष्ठान आत्मसत्ता, और जहां विवर्त वस्तु होती हैं वो अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं हुआ करती हैं। इसके लिए दृष्टांत दिया गया स्वप्न का, रज्जु सर्प का, शुक्ति रजत का, जो भी भ्रांति के पदार्थ थे वे सारे इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए आपके दृष्टांत हैं। इसमें एक बहुत मजेदार बात परम पूज्य महाराज श्री अपने कठोपनिषद के प्रवचन में कहते हैं, जहां सत्य का पूर्ण बोध हो, आत्मा की पूर्ण अनुभूति हो, वहां पर भी भ्रांति नहीं है। और पूर्ण अज्ञान हो आत्मतत्व का तब भी भ्रांति संभव नहीं है। भ्रांति का उद्गम है बोध तो है लेकिन सामान्य बोध है। बहुत सामान्य माने कुछ तो है। हम आप किसी को पूछे कि आप कौन हैं तो व्यक्ति परिचय देता है अपना, और वो परिचय निश्चयात्मक होता है, उस परिचय में कोई संदेह नहीं होता है। व्यक्ति अपना परिचय देता है कि अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, अमुक तिथि पर पैदा हुआ, अमुक स्थान में निवास करने वाला, काला गोरा छोटा मोटा, मूर्ख बुद्धिमान धनी गरीब, छोटा बड़ा अपना परिचय देता है। लेकिन उस परिचय में कोई संदेह नहीं होता है। आदमी छाती ठोक के बोल देता है कि भाई अमुक नाम वाला मैं हूं। नाम के लिए बहुत सारे झगड़े झंझट होते हैं, शरीर को लेकर के बहुत सारे संघर्ष होते हैं, देश को लेकर संघर्ष होते हैं, तो उसके होने में कोई संदेह नहीं है। वो निश्चयात्मक बोध है। लेकिन ये निश्चयात्मक जो बोध हैं ये शास्त्रीय दृष्टि से भ्रांति है, क्योंकि भ्रांति भी निश्चयात्मक होती है। भ्रांति भी निश्चयात्मक होती है, संदेह वो निश्चयात्मक नहीं होता है। संदेह माने अस्ति न वा, वो है कि नहीं है, ये संदेह है। लेकिन मैं हूं ये भले ही विपरीत बोध है लेकिन निश्चयात्मक है। जैसे रज्जु में सांप किसी ने देखा और देखने के बाद वो निश्चय में पहुंच गया कि वो तो है। वो तो दूसरे को जाके यही बताएगा कि भैया सांप है, मैंने देखा है, उसकी पूंछ देखी है, उसका मुख देखा है, वो हिल रहा था, वो चल रहा था, वो सारी चीजें गिना देगा आपको। वो निश्चयात्मक बोध है, है भ्रांति रूप लेकिन वो निश्चयात्मक बोध है, अयथार्थ ज्ञान है। और इसके मूल में अधिष्ठान का अबोध है। अधिष्ठान का अज्ञान है और उसी अज्ञान से पैदा हुआ विपरीत बोध भ्रांति दर्शन ये आयम सर्प है। ऐसे आत्मतत्व का बोध प्रत्येक व्यक्ति को है, मैं हूं। निसंदिग्ध रूप से प्रत्येक व्यक्ति को बोध ये है कि मैं हूं, लेकिन ये बोध नहीं कि मैं कौन हूं। और वो मैं कुछ हूं, मैं हूं, ये जो ज्ञान है वो भ्रांति दर्शन के प्रति कारण बना। सम्यक बोध के अभाव में जो कुछ का जो बोध है वो भ्रांति में बदल गया और अब हम भ्रांति में जीते हैं कि मैं शरीर हूं। ये लंबी श्रृंखला, ये सारी दुनिया और ये सब कुछ, ये आत्मा में अधिष्ठान तत्व में दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देता है लेकिन वो नहीं है, माने अधिष्ठान ही है। ये कल्पित वस्तु अधिष्ठान रूप होती है। ये सिद्धांत वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको रज्जु दिखाई दे रही है उस समय भी सांप नहीं था, और जब रज्जु दिखाई नहीं दे रही थी, सांप दिखाई दे रहा था, उस समय भी सांप नहीं था और उसके पहले भी नहीं था। वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों में सांप नहीं था, वो रज्जु ही थी। ये अधिष्ठान के ज्ञान के बाद आदमी को ज्ञान हो जाता है, रज्जु ही थी, सर्प नहीं था तीनों कालों में। इसका मतलब कि रज्जु ही सांप के रूप में दिखाई दे रही थी, यही हुआ। माने वो जो भ्रम है वो अधिष्ठान रूप है, अधिष्ठान से अलग नहीं है। ऐसे सारी ये दुनिया आत्म तत्व के अज्ञान में दिखाई दे रही है। शरीर से लेकर, मन से लेकर सारी दुनिया स्वर्गादि तक ये आत्म तत्व के अज्ञान में आत्मा में दिखाई दे रहा है। और जब हम आत्मा को जान लेंगे, अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि जान लेंगे, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर से लेके, मन से लेके सारी दुनिया ये मेरे में कल्पित है, मेरे में भ्रम है, मनोमात्र मिदम जगत। और ये भ्रांति का लक्षण भी यही है। भ्रांति का लक्षण है स्वाधिकारणे, स्वाधिकरणे भासमानत्वम, अपने अधिकरण में, अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई दे, यही भ्रांति का लक्षण है। इस बात को बहुत ध्यान देके श्रवण करेंगे। ये अद्वैत सिद्धि में पांच लक्षण किए हैं। अद्वैत सिद्धि में भ्रांति का लक्षण किया, प्रतिपन्न उपाधो, त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम, मिथ्यात्वम, स्वाधिकरणे भासमानत्वम, स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम, मिथ्यात्वम। बहुत सरल है ये। जो वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई दे वही मिथ्यात्व है। अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई दे, जहां पर वो वस्तु न हो और वहां पर दिखाई दे। इस संदर्भ में मैं आपको एक न्याय का सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। न्याय मत में अभाव कारण माना है, कार्य मात्र के प्रति अभाव को कारण माना है। चार प्रकार के अभाव होते हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। ये अभाव तो सभी दार्शनिक मानते हैं, तरीकों में केवल अंतर है। अन्योन्याभाव माने एक का दूसरे में अभाव, जो आप हैं मैं नहीं, मैं आप नहीं, आप कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन आप कुर्सी नहीं है, कुर्सी में आपका अभाव है, आप में कुर्सी का, ये अन्योन्य अभाव। अन्य का अन्य में जो अभाव है वो अन्योन्य अभाव। और अत्यंताभाव माने वस्तु का एक जगह पर होना और दूसरी जगह पर नहीं होना, ये अत्यंताभाव। आप कुर्सी पर तो हैं लेकिन यहां नहीं है, तो यहां पर आपका अत्यंताभाव। आप सत्संग में हैं लेकिन घर में नहीं है, तो घर में आपका अत्यंत अभाव होगा। और प्रथम सा भाव जैसे है लेकिन शरीर छूट गया, वो कौन सा भाव है? वो अन्योन्य भाव नहीं है, अत्यंता भाव नहीं है, वो प्रथम सा भाव है। जैसे कि घड़ा यहां नहीं है, अत्यंता भाव। घड़ा कपड़ा नहीं है, वो अन्योन्य भाव। और घड़ा फूट गया, वो प्रथम सा भाव। और एक चौथा अभाव है जिसको बोलते हैं प्राग भाव। प्राग भाव माने वस्तु के होने के पहला अभाव। घड़ा होने के पहले घड़े का जो अभाव है उसको प्राग भाव बोलते हैं। आदमी के पैदा होने के पहले जो आदमी का अभाव है वो प्राग भाव है। तो नैयायिक बोलते हैं ईशस तद्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्ट दिगेव च प्राग प्रतिबंधका भावो कारणाः साधारणा स्मृतः। वो कहते हैं कि कार्य मात्र के प्रति ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर प्रयत्न, ईश्वर की इच्छा, देश काल, प्रतिबंध का भाव और प्राग भाव भी कारण है। प्रतिबंध का भाव का अर्थ है कार्य पैदा होने में कोई प्रतिबंध पैदा करने वाला आदमी होना या कोई पदार्थ हो तो वहां कार्य संभव नहीं है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और कोई आके बोलने ना दे तो प्रतिबंध हो गया ना। आप माला जप कर रहे हैं और कोई आके प्रतिबंध करने लगे, आप माला जप कर रहे हैं बुखार आ गया, आप माला जप कर रहे हैं खांसी आ गई, ये प्रतिबंध है। तो कार्य को होने के लिए प्रतिबंध का नहीं होना भी कारण है। इसलिए आदमी कार्य करने के पहले प्रतिबंधों को हटा देता है। ओहो ये प्रतिबंध है, इसको भाई हटाओ। अभी एसी चल रही कि नहीं आदमी देखता है कि नहीं मधुबाबू? क्योंकि वो प्रतिबंध हो गया ना, वो गर्मी लग रही है आदमी। फिर आदमी का मन जो है प्रवचन में नहीं लगता है, फिर वो बार बार गर्मी में चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, वो देखो हो। तो ये प्रतिबंध नहीं होना भी प्रतिबंध है और होना भी प्रतिबंध है। बहुत ज्यादा हो गया तो, यदि बहुत ज्यादा एसी हो गई तो आदमी को तो हो बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, होना भी प्रतिबंध है और नहीं होना भी प्रतिबंध है। यदि होना प्रतिबंध है तो उस होने को हटाओ, और यदि नहीं होना प्रतिबंध है तो उस नहीं होने को हटाओ, तो आपका कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा। हमारी साधना में बहुत सारी चीजें हैं जो होना प्रतिबंध है, काम क्रोध लोभ मद मच्छर, मन के विकार, मन की चंचलता है, ये सारे हमारे आध्यात्मिक साधना में प्रतिबंध है। होना इसका प्रतिबंध है, उसका नहीं होना हमारे साधना में कारण है। और बहुत सारा नहीं होना वो नहीं है, वो नहीं है वो कारण प्रतिबंध है। जैसे संयम नहीं है, दैवी संपदा, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति, शम दम श्रद्धा समाधान दया करुणा उपरति वैराग्य, ये सारे गुण दैवी गुण हमारे साधना में साधक हैं, लेकिन ये नहीं है, इसका नहीं होना प्रतिबंध है। अब इस प्रतिबंध को हटाना हो तो इस नहीं होने को होने में बदलना है, इस नहीं होने को बदलना है होने में। क्योंकि नहीं होना बदलेगा कैसे, होने में बदलेगा। ये प्रतिबंध है और इस प्रतिबंध को हटाना वो कार्य के प्रति कारण है। तो ये नव्य नैयायिक बहुत सुंदर बात कहते हैं, प्रतिबंधक हमारे जीवन में कार्य के प्रति यदि है तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। और उस प्रतिबंध को यदि हटाएंगे नहीं तो फिर आपका कार्य सुचारू रूप से बनेगा नहीं। इसलिए प्राग प्रतिबंध का अभाव, प्रतिबंध का भाव उसके प्रति कारण है। और चौथा जो अभाव है ना वो प्राग भाव, ये भी बड़ी सुंदर बात है। ये जितने भी दार्शनिक हैं, चाहे नव्य न्याय हो, योग हो, सांख्य हो, कणाद हो, गौतम, ये बहुत मजेदार दर्शन है। प्राग भाव भी कारण है, वस्तु के होने के प्रति वस्तु का नहीं होना भी कारण है। वस्तु के होने के प्रति वस्तु का नहीं होना भी कारण है। यदि पहले से वस्तु है तो उस वस्तु का पैदा नहीं कर सकते। आप पैदा हुए तो आप पैदा होने के पहले थे कि नहीं थे? बहुत सामान्य प्रश्न है ये। आप पैदा हुए उसके पहले आप थे कि नहीं थे? आप जो जन्म तारीख बता देते हैं कि अमुक अमुक, तो जन्म तारीख के पहले आप थे कि नहीं थे? नहीं थे। वो नहीं थे ना, वही प्राग भाव है। और वो नहीं होना ही होने में कारण बन गया। यदि पहले से ही आप तारीख के पहले ही होते तो आप कहां से पैदा होते? अब ये जो माइक है, इस माइक को पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि है ना, उसका अस्तित्व है, पैदा होने का ही परिणाम है। ये पैदा हुआ इसीलिए है। आप इसको पैदा नहीं कर सकते। इसको पैदा करना हो, इसको पैदा कर, अब इसको तो कभी पैदा नहीं कर सकते। कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो होना है ना, बहुत अद्भुत है, अपूर्व है। अब इस रूप में आप जिस रूप में, इस रूप में आप कभी पैदा हो सकते हैं क्या? कभी दुनिया में, किसी काल में, किसी युग में? संभव नहीं। आपका होना अपूर्व है, इसलिए हम इस शरीर के रूप से भी आप बहुत अद्भुत हैं। इसलिए हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो जीवन है ना, बहुत अद्भुत है। एक बार हुए हम, एक बार, अब ऐसे नहीं बनने वाला है। एक बार इस धरातल पर फूल खिलता है, एक ही बार। अब वो फूल दोबारा नहीं खिलता है। इसलिए उसका जो होना है, उसका होना ही अपने आप में होना है, वो पैदा होना है। और जब वो पैदा हुआ उसके पहले नहीं था, तो वो प्राग भाव, वस्तु का नहीं होना भी वस्तु के पैदा होने के प्रति कारण होता है। ये प्राग भाव है, अभाव है। अपने अभाव के अधिकरण में वो पैदा हुआ। जहां घड़ा नहीं है वहीं तो पैदा हुआ, जहां कपड़ा नहीं था वहीं तो वो पैदा हुआ। तो स्वभावाधिकरण ही भासमानत्मम, अपने अधिकरण में, अपने अभाव के अधिकरण में वो पैदा होना। अच्छा, यहां पैदा होना नहीं है। वेदांत में अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीयमानत्व, वो दिखाई दे, अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई दे। जैसे सांप जो दिखाई दे रहा है, वो अपने अधिकरण में दिखाई दे रहा है कि अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई दे रहा है? ये वेदांत की प्रक्रिया बहुत मजेदार है। आप स्वप्न देख रहे हैं। राजा जनक ने स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हूं, है तो राजा, लेकिन वो स्वप्न देख रहे थे मैं भिखारी हूं। और वो इतने ऐसे भिखारी की कोई भीख भी नहीं दे रहा है, वो मांग रहे हैं और वो सब दुत्कार रहे हैं, ओ चलो चलो चलो, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान, बहुत मुश्किल से किसी व्यक्ति ने उनको दो मुट्ठी चावल दिए, बहुत प्रसन्न हो गए। अब तो स्वप्न में प्रसन्न हो रहे हैं, पहले तो बहुत रो रहे थे, हाय हाय हाय, बहुत भूख लगी, भिक्षा नहीं दे रहे लोग, दुत्कार रहे। दो मुट्ठी चावल मिला, कहीं पुरानी मटकी मिली, और वो सोच रहे थे कि ये चावल पका करके मैं खाऊंगा। आग जलाई और मटका रखा, पानी डाला, चावल डाला, अब वो कितनी खुशी है, वो तो बहुत खुशी कि अब चावल पकेगा मैं खाऊंगा, हा हा हा। और लेकिन उसी समय दो लड़ते हुए सांड पता नहीं कहां से आ गए, और वो बहुत कोशिश की सांडों को हटाने की, लेकिन वो हट नहीं पाए और वो आ गए और उसमें उनकी हंडी टूट गई। अब बताइए, अब वो कितना दुख है, हाय हाय हाय। अब वो बैठ करके रो रहे, अब क्या होगा। और जैसे रोते 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 थोड़ी हल्की सी नींद आ गई होगी, जग गए वो, उधर सो गए और इधर, वहां स्वप्न में तो सो गए हैं और इधर जग गए। आप जगने के बाद उनकी जागृति संदिग्ध हो गई, जागृति संदिग्ध। हम भी तो जगते हैं, स्वप्न तो हम भी देखते हैं, हजारों बार हमने स्वप्न देखा लेकिन हमारी जागृति कभी संदिग्ध नहीं हुई। लेकिन राजा जनक की जागृति संदिग्ध हो गई। अब वो सोचने लगे कि वो भिखारी भी तो सोया था, जो भिखारी अभी अभी रो रहा था ना, वो रोते रोते सो गया, तो कहीं ये उस भिखारी का स्वप्न तो नहीं है। भाई एक राजा का स्वप्न भिखारी हो सकता है? एक राजा का स्वप्न भिखारी हो सकता है कि नहीं? अभी तो हुआ। अरे भाई, एक राजा था, एक स्वप्न देख रहा था कि वो भिखारी हूं मैं। जब एक राजा का स्वप्न भिखारी हो सकता है तो भिखारी का स्वप्न राजा हो सकता है कि नहीं? अब राजा सोचने लगे कि मैं कौन हूं भाई, वो भिखारी का स्वप्न हूं कि मैं सचमुच कौन हूं मैं अभी अभी तो देख रहा था मैं भिखारी हूं, और अभी मालूम पड़ रहा है कि मैं राजा हूं। तो भाई ऐसा तो नहीं वो भिखारी स्वप्न देख रहा हो, मैं राजा हूं। ये बहुत अद्भुत बात है। ये स्वप्न, इतना भी स्वप्न समझ में आए तो आपको वेदांत सारा समझ में आ गया। राजा जनक सोच रहे थे जैसे मेरा स्वप्न भिखारी था, वैसे कई भिखारी का स्वप्न मैं तो नहीं, संभव है। ठोक पीट के देखा उसने, ओ लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि वहां भी ठोक पीट के देखा था ना। जब वो रो रहे थे तब भी तो मालूम पड़ रहा था कि ये बिल्कुल ठोस है, था तो स्वप्न, लेकिन वहां भी ऐसा मालूम पड़ रहा था कि बिल्कुल सही। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो भिखारी सो गया हो और वो स्वप्न देख रहा हो, मैं राजा हूं और ये प्रजा, हे सोने की सिंहासन, आहा ये क्या है। अब वो संदिग्ध हो गई, जागृति संदिग्ध हो गई, उनके स्वप्न ने उनके जागृति को संदिग्ध कर दिया। और उसके बाद फिर वो सोचने लगे, ये सत्य कि वो सत्य है, वो भिखारी वो सत्य है कि ये जनक सत्य है, ये सत्य कि वो सत्य है, उसका स्वप्न ये है कि इसका स्वप्न वो है। अब कौन उसका समाधान दे? बहुत समाधान तो दिया लो महात्माओं ने, बहुत समाधान दिए, बहुत समाधान, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। अष्टावक्र परम ज्ञान में स्थित और वो पहुंच गए, समझ गए राजा क्या कहना चाहते हैं, राजा के अंतर्मन को पढ़ लिया, राजा के मन में प्रवेश करके उनके प्रश्न को जान लिया, उनको इस उस प्रश्न का व्याख्यान श्रवण करके जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और उन्होंने एक ही शब्दों में उपदेश किया, राजन न वो सत्य हैं और न ये सत्य हैं। अरे जैसे ये स्वप्न वो स्वप्न, वैसे ये भी स्वप्न है, ये दोनों भी स्वप्न है, ये दोनों स्वप्न की बात है, बोध हो गया उनको। अब ये तो स्वभाव आदि करने भासमानत्वम, अब वो सोच रहे थे कि राजा की मैं राजा हूं, वो राजा के अधिकरण में वो प्रतीति हो रही थी कि राजा के अभाव के अधिकरण में प्रतीति हो रही थी। वहां भिखारी थे क्या? नहीं थे। वो राजा थे क्या? आप संकोच मत करो, अब उड़ा दो उसको। हाँ, वो दोनों को उड़ा दो। वो राजा थे क्या? नहीं थे। तो राजा के अभाव में राजा मालूम पड़ रहे थे। वो भिखारी थे क्या? नहीं थे। भिखारी के अभाव में भिखारी मालूम पड़ रहे थे। जैसे सर्प के अभाव के अधिकरण में सर्प मालूम पड़ता है, इसलिए आप रज्जू में सर्प की भ्रांति मान लेते हैं। ऐसे स्वप्न आप कब मानते हैं? वस्तु के अभाव में वस्तु की प्रतीति हो। आप हरिद्वार जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, स्वप्न में जा रहे हैं, तो वहां ट्रेन है क्या? तो ट्रेन के अभाव में इतनी लंबी चौड़ी ट्रेन दिखाई दे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर एक बात, उन्होंने कहा स्वप्न, स्वप्न में छोटे देश में बड़ा देश मालूम पड़ता है, छोटे समय में बड़ा समय मालूम पड़ता है, और वस्तु के अभाव में वस्तु मालूम पड़ती है। वहां तीन भ्रांतियां हैं, स्वप्न में तीन भ्रांतियां हैं, वहां देश कितना बड़ा है ऐसे देखा जाए तो आप जहां सो रहे हैं वो देश भी, और उस देश में सो रहे हैं आप भी, और उस आप के अंदर दिखाई देने वाला स्वप्न भी, वो तीनों भी स्वप्न है। लेकिन जब आप प्रक्रिया में विचार करते हैं तो आप स्वप्न देख रहे हो, कहते पूरी तत् नाड़ी है, बहुत छोटी सी नाड़ी है, और उस पूरी तत् नाड़ी में संस्कारों से स्मृतियां जाग जाती हैं, और उस स्मृतियां कल्पना में बदल जाती हैं, तो स्वप्न व्यक्ति देखता है। हमारे अंदर संस्कार हैं, आप सो रहे हैं और वो संस्कार जगे उस नाड़ी में, जगने के बाद वो स्मृति रूप एक कल्पना आपने निर्मित कर दी, वही स्वप्न है। तो वहां देश तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, और उस छोटे से देश में आप क्या देख रहे हैं, ओहो विशाल जंगल देख रहे हैं, ट्रेन चल रही है ना, रेल पटरी देख रहे हैं, छोटे से देश में बहुत बड़ा देश दिखाई दिया। और स्वप्न जब आप देखते हैं ना तो वो समय कितना होता है, अरे आंख यूं तो झपकी लगी उसमें भी स्वप्न दिखता है। एक श्रोता था, वो उठ के जा रहा था, वो और उठ के गया फिर चट से आके बैठ गया। तो बाद में मैंने पूछा कि भैया ऐसा क्यों हुआ, चट से उठा 10 कदम गया फिर आके बैठ गया, मैंने कहा बात क्या थी। उसने कहा कि मेरे को भ्रम हो गया था कि प्रवचन खत्म हो गया है। तो मैंने कहा तुमको कैसे भ्रम हो गया कि प्रवचन खत्म हो गया, अरे बोले थोड़ी झपकी लगी थी। और उतनी झपकी में उन्होंने आभास अंदर से स्वप्न देखा, बहुत छोटा सा वो समय, और उसने स्वप्न देखा कि ओम पूर्णमदः पूर्णमदम हो गया। और जैसे आंख खुली हो गया, फिर देखा सब लोग बैठे, अरे नहीं नहीं ये तो स्वप्न है। आपका छोटा सा वो समय एक क्षण का, और उस एक क्षण के स्वप्न में आपने देखा लंबा चौड़ा दीर्घ काल स्फुरंते ते स्वर्ग मोक्षादि विभ्रमा, उसमें दीर्घ काल स्फुरित हो जाता है, मालूम पड़ता है। और कितना भैया पैदा हुए, कितने साल हो गए, 80 साल हो गए। अच्छा आदमी मनाता है कि नहीं, जन्मदिन मनाता है, तो ये जन्मदिन मनाता है वो छोटे समय में लंबा समय मनाता है कि छोटे समय में छोटा समय मनाता है, छोटे समय में। आदमी बोलता है कि ओ 80 साल हो गए, 80 साल हो गए, वो 80 साल किसमें दिखाई दे रहे हैं, हा? वो 80 साल इतना लंबा समय मालूम पड़ रहा है, वो लंबा समय पर छोटे से समय में मालूम पड़ रहा है, दीर्घ स्वप्न मालूम पड़ रहा है, एक क्षण में लंबा स्वप्न मालूम पड़ रहा है। अच्छा और आपको क्या मालूम पड़ रहा है, दीर्घ काल के अभाव में दीर्घ काल मालूम पड़ रहा है। और आप ये भी मालूम पड़ रहा है कि नहीं कि मैं बच्चा था, मैं जवान, मैं बूढ़ा। अच्छा ये जो जवान थे आप, तो जवानी के अभाव में जवानी मालूम पड़ रही थी कि जवानी के अधिकरण में जवानी मालूम पड़ रही थी। अरे आप स्वप्न का दृष्टांत सामने रखेंगे तो वेदांत क्लियर हो जाएगा आपको। एक वामदेव जी महाराज जी थे, बड़े अपने आश्रम में रहते थे, परमपूज्य खंडानी जी महाराज उनको बहुत मानते थे। परमपूज्य महाराज श्री कहते थे कि ऐसे साधु को बांध के रखना चाहिए, सब ऐसे साधु को बांध के रखना चाहिए। तो एक बात अक्सर वो बोलते थे कि मैं स्वप्न का एक्सपर्ट हूं, ऐसा बोलते। तो एक दिन मैंने पूछा कि महाराज जी आप स्वप्न के एक्सपर्ट बोलते हैं, उसका मतलब क्या? अरे बोले वेदांत को पचाने के लिए केवल एक ही दृष्टांत है साधक के पास, बोले स्वप्न। आप गहराई से स्वप्न पर चिंतन करो तो आपको मालूम पड़ेगा, ओहो स्वप्न, वहां सत्य कुछ भी नहीं था लेकिन अपने को सब कुछ सत्य मालूम पड़ रहा था। अरे बोले वैसे ही है, ये लंबा स्वप्न है, जीवन पैदा हुआ मैं, और स्वप्न भी मालूम पड़ता है कि नहीं, पैदा हुआ, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं लोग स्वप्न में भी, मना लिया, जवान भी हो गया स्वप्न में और स्वप्न में बूढ़े भी हो गए, तो वहां अवस्थांतरण, वहां मालूम पड़ा कि मैं जवान हूं, और वहीं पर मालूम पड़ रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया। तो अपने अभाव के अधिकार अधिकरण में ही प्रतीति है, जवानी के अभाव में जवानी की प्रतीति है, और बुढ़ापे के अधिकरण में बुढ़ापे की प्रतीति है, रोग के अधिकरण में रोग के अभाव के अधिकरण में रोग की प्रतीति। अच्छा आप रोगी है कि नहीं? नहीं है। आप बूढ़े हैं? नहीं है। अच्छा आप शरीर है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि शरीर के अभाव के अधिकरण में शरीर प्रतीति हो रही है। वो राजा जनक, वो जो पांच भौतिक शरीर दिखाई दे रहा था, वो था कि नहीं? वहां वो प्रतीति थी ना। तो ऐसे आप अपना शरीर जो प्रतीति के रूप में देख रहे हैं, वो भी उसके अभाव के अधिकरण में, वो नहीं है, केवल भासमानत्व है उसमें। तो वस्तु के अभाव में वस्तु का दिखना, अवस्थाओं के अभाव में अवस्थाओं का दिखना, काल के अभाव में काल का दिखना, देश के अभाव में देश का दिखना, यही है भ्रांति। इसी को बोलते मिथ्यात्व। स्वभाव अधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व, अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई देना, यही उसका मिथ्यात्व है। और इसी को विवर्त बोलते हैं, चैतन्य का विवर्त। ये जो जगत है ना, वो चैतन्य का विवर्त माने चैतन्य में केवल मालूम पड़ रहा है, जैसे स्वप्न मालूम पड़ता है। ये स्वप्न आदि पदार्थों की तरह चैतन्य सत्ता में स्फुरन है। यहां दूसरे श्लोक में कहते हैं, यदिदम किम च जगत सर्वम, ये संपूर्ण जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, प्राण एव एजति निश्रितम, जो प्राण तत्व माने ब्रह्म तत्व, यहां प्राण तत्व शब्द का अर्थ ब्रह्म तत्व है, प्राण एव सृजति निश्रितम माने ब्रह्म तत्व के द्वारा ही ये पैदा होता है, अधिष्ठान तत्व के द्वारा ही पैदा होता है, वो दिखाई देता है, क्योंकि अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु तो कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि स्वप्न देखने के लिए भी तो आपका होना जरूरी है ना। सर्प देखने के लिए आपको रज्जू की बहुत जरूरत है, रज्जू न हो तो आपको स्वप्न दिखाई नहीं देगा। और यहां प्राण बोला है, प्राण, प्राण का अर्थ है जीवन। इस दुनिया में हमारे जीवन में व्यावहारिक अर्थों में कोई सबसे कीमती मूल्यवान चीज है तो वो प्राण तत्व है। मैंने एक दिन आपको कहा था कि आप कान बंद करके घंटों बैठ सकते हैं, आंख बंद करके घंटों बैठ सकते हैं, मुख बंद करके घंटों बैठ सकते हैं, हाथ पैर बांध के आप घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन नाक दबा के आप कितना घंटे बैठ सकते हैं? घंटे, यहां तो प्रतिस्पर्धा यदि लगानी होगी तो घंटों में होगी कि मिनटों में? यदि हम प्रतिस्पर्धा कर दें कि भैया नाक बंद करके लोग कितना घंटे बैठे रहेंगे, अरे बड़े घंटे की बात मत करो, मिनटों की, मिनटों की, सेकेंड की बात करो। ये इतना मूल्यवान प्राण तत्व है, और हम सबके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, आंख नाक, नाक भी देते ध्यान, प्राणों के ऊपर ध्यान नहीं है। हमें कोशिश करते कि जुखाम न हो, आंख ठीक हो, कान ठीक हो, हाथ पैर ठीक हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे प्राण ठीक हो, कभी नहीं। जो सबसे मूल्यवान है उस पर कोई ध्यान नहीं, इसलिए प्राणों को मजबूत करना चाहिए, प्राण तत्व हमारा मजबूत होना चाहिए। ये प्राण तत्व ये शरीर की जो ये क्षतियां हैं वो ठीक कर लेते हैं, ये प्राणायाम का रहस्य है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, हमारे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है शास्त्रों ने, कभी आपने पेड़ को कटा हुआ देखा होगा, थोड़ा सा वो कई बार क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ने वाले लोग थोड़ा काटते हैं उसको, पैर रखने के लिए थोड़ा काटा फिर उसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन आप थोड़े दिनों के बाद जाइए, वो भर जाता है, वो भर जाता है, वो आपको मालूम तो पड़ता है कि यहां कांटा जरूर है, लेकिन वो गोल गोल वहां गोल गोल ऐसा कुछ बनता है, भर जाता है। वो भरा कैसे? तो वो भरा प्राण तत्व के कारण भरा, वो उसने ऑक्सीजन ली और उस ऑक्सीजन के कारण उसको धीरे धीरे उसको जीवन तत्व प्रदान कर दिया। ऐसे हमारे शरीर में घाव है, अनेकों प्रकार के रोग हैं, यदि हमारा प्राण स्ट्रांग है, मजबूत है, शक्तिशाली है, तो आपके शरीर के सारे घाव भर देगा वो। अच्छा, सबसे बड़ा घाव मन का है कि तन का? सबसे बड़ा घाव तो मन का है। अच्छा, अभी आप बैठे हैं, तन तो बहुत ठीक है, लेकिन अचानक आपको याद आ गई, ओहो 10 दिन पहले उस आदमी ने मेरे को डांट दिया था। कितना बड़ा घाव है? अरे तो बहुत बड़ा घाव है वो। अब उस मन के घाव को भरना है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब मन के घाव हैं। और इन मन के घावों को यदि भरना है तो क्या करना होगा आपको? ये मन के घावों को भरने के लिए तो है, करो प्राणायाम करो, थोड़ा थोड़ा प्राण खींचो, बैठ के वो रामदेव बाबा का जो भस्त्रिका है, कपाल भाती है, ये कोई रामदेव बाबा का नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारी, ये प्राणायाम की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है। आप कर्मकांड भी करते हो ना, तो पंडित जी आपको इशारा कर देते हैं, अतः प्राणायाम, तो आप क्या करते हो फिर? वो आदमी तो यूं नाक में हाथ लगाता है, वो हाथ धो लेता है, तो आपने तो उसको कर्मकांड का अंग बना लिया है। वहां किसने बोला आपको कि अच्छा प्राणायाम माने नाक को हाथ लगाओ और हाथ धो दो? आपने उसको कर्मकांड बना लिया है, तो नाक में हाथ लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। और कई बार तो आदमी नाक में भी हाथ नहीं करके छोड़ देता है, क्यों हाथ धोना पड़ेगा? आप पूजा कर रहे हैं और प्राणायाम के नाम पर क्यों यूं किया, बस हो गया तो आपका प्राणायाम नहीं हुआ, आपका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। आप विधिवत प्राणायाम कीजिए, नाक पकड़िए, श्वास रोकिए, छोड़िए, और आप अपने मन को समाहितता में ले जाइए, तो प्राणायाम का प्रयोजन हुआ। और ये आपको वेदांत में मदद करेगा, ये आपको भक्ति में मदद करेगा, आपके अंदर का आध्यात्मिक जो उत्साह है वो बढ़ाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा। आप करिए वो प्राणायाम कीजिए, जो भी भस्त्रिका है, कपाल भाती है, अनुलोम है, विलोम है, प्राण है ना, वो प्राण तत्व एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, ये तन और मन के घाव भरने वाली ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसलिए आप प्राण एजति निश्रितम, इसलिए यहां ब्रह्म तत्व के लिए प्राण की उपमा दी, भैया ये प्राण है, ब्रह्म प्राण है। अच्छा, प्राण ही ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म ही ये प्राणोपासना भी है आपके वेदांत में, प्राणोपासना भी है, प्राण है ब्रह्म उपास, प्राणो प्राण ब्रह्म इति उपासित, प्राण ही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करो। और ये प्राणायाम जो है ना, आपके मन को भी स्थिर कर देता है, प्राणायाम आपके मन को भी स्थिर कर देता है। आपके भागवत में कई जगह पर जहां पर साधना की बात है वहां प्राणायाम की बात है। जितश्वासो जित प्राणो प्रत्याहित षडेन्द्रिय हरि भावनया ध्वस्त रजः सत्व तमो मलः। जित प्राणो, प्राणों को जिन्होंने जीत लिया, अब वो प्राणों को जीत लिया मैंने प्राणायाम, अच्छी प्रकार से प्राणायाम। और कोई सही ढंग से प्राणायाम करे ना, तो उसको व्यायाम करने की भी जरूरत नहीं रहती, वो पूरे शरीर को जो है ना वो खींच लेता है, वो जो आपके शरीर की जो ग्रंथियां वो रोग के केंद्र है उसको खत्म कर देता है वो। इसलिए जित श्वास हो, जित संगो प्रत्याहित षडिंद्रिय, ये भागवत में धृतराष्ट्र के उपलक्ष्य में श्लोक बोला है, धृतराष्ट्र के बारे में बहुत ऊंची बात बोली भागवत में, विदुरस्तत अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाष्यत राजन निर्गम्यतम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। जब उन्होंने कहा कि राजन बहुत बड़ा भय आने वाला है, बहुत बड़ा भय आने वाला है, और उस अदृश्य भय की चर्चा नहीं की विदुर जी महाराज ने, विदुर जी महाराज ने ये नहीं बोला कि वो अदृश्य भय क्या आने वाला है, ये नहीं बोला, या भगवान सुधाम गमन जाने वाले हैं, उनका सुधाम गमन होने वाला है, पांचों पांडव सब कुछ छोड़ के वन में चले जाएंगे और उस समय आप क्या करो, ये नहीं दिखा, वो नहीं बोला उन्होंने। और फिर उन्होंने थोड़ा सा डांट भी दिया, हो मही यशी जंतो जीविताशा यया भवान भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। उन्होंने कहा कि अरे क्या कुत्ते की तरह रोटी तोड़ रहे, वैसे बोलो, वैराग्य हो गया। और जब वैराग्य हो गया ना, स्वकात परतो वेति जातो निर्वेद आत्मवान। वहां पर व्यासजी महाराज ने धृतराष्ट्र की प्रशंसा कर दी। यह स्वकात परतो वेति, अपने से और दूसरे से जात निर्वेद वैराग्यवान, वैराग्यवान हो गया वो, धृतराष्ट्र में वैराग्य हो गया, हो अपने शरीर से भी वैराग्य हो गया। और दूसरे ये राज्य संबंधी धन वैभव ऐश्वर्य इसके प्रति भी वैराग्य हो गया। जात निर्वेद आत्मवान, और उसके बाद वो चल पड़ा, सप्त सरोवर आ गए हरिद्वार, और यहां आकर के फिर जिधर श्वास हो बैठ गए, और उन्हें प्राणायाम किया। कितना दिन किया वो गिरीश भाई? 5 दिन केवल। सवा अद्यतनात राजन पंचमे अहनी। आगे जाके नारद जी महाराज ने बोला, राजन चिंता मत करो, विदुष्ट जी महाराज जी को बोला, बोलो चिंता मत करो, अरे बोले बहुत भाग्यशाली है धृतराष्ट्र, बोले 5वें दिन उनकी समाधि लगेगी और समाधि की अवस्था में शरीर छोड़ देगा वो, क्योंकि और वैराग्य जब पैदा हुआ उनके अंदर वो बैठ गया आसन लगा, अब तो वैराग्य हो गया। वैराग्य का अर्थ यही है, अब न दुनिया की कोई चीजें और न ये तन न मन और न मन के विकार और वो सारी चीजें, वो युद्ध जनित दुष्परिणाम और वो भीम के प्रति द्वेष, वो सब वैराग्य के अग्नि में खत्म हो गया। जित श्वास हो, श्वास को जीत लिया उन्होंने, जित संगो, इंद्रियों के संग को जीत लिया, और प्रत्याहृत षडेन्द्रिय, जैसे कछुआ अपने सारे अवयवों को अपने में समेट लेता है, वैसे 6 इंद्रियों को धृतराष्ट्र ने समेट लिया। और हरि भावनया, देखो उन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता सुनी थी और उसी भगवत गीता के श्रवण का ये फल था वैराग्य होने के बाद हरि भावनया। अब उनको भगवान कृष्ण सत्य मालूम पड़े, आसक्ति में भगवान सत्य मालूम नहीं पड़ते, वो संसार सत्य मालूम पड़ता है। हम आसक्ति में बैठ करके कितना भी सत्संग श्रवण करें, वो सत्संग उतना सत्य मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन सुनना व्यर्थ नहीं है। आपको समझ में न भी आए तो भी आपका सुनना व्यर्थ नहीं है। कई बार आदमी सोचता है कि भैया हमको समझ में तो नहीं आता है, संसार मिथ्या है, अहम ब्रह्मास्मि, समझ में आता है? अरे नहीं समझ में आता है तो सुने कि नहीं सुने, नहीं छोड़े नहीं। आपको समझ में आए कि न आए, आपको छोड़ना नहीं है। धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया, वासना में बैठकर जब हम श्रवण करते हैं तो उस समय वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, और जब नहीं आती है तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन श्रवण नहीं छोड़ना चाहिए। धृतराष्ट्र ने सुना, 18 अध्याय गीता सुनी उसने, उसको भले ही समझ में नहीं आया, और वो यही सोच रहा था कि कृष्ण अर्जुन के दिमाग को खराब कर रहे हैं, यही सोच रहा था वो। वो सोच रहा था कि ये तो युद्ध में प्रेरित कर रहे हैं, ये सत्य तो पता नहीं क्या है, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन सुना। और आदमी जब सुनता है ना, उसकी स्मृति बनती है, आदमी सुनता है तो वो स्मृति उसको संस्कारों में ले जाती है, और वो संस्कार पुनः उनके संस्कारों को जगाकर पुनः स्मृतियों में ले जाते हैं। इसलिए संस्कार स्मृति, संस्कार स्मृति, कई बार आपको याद आती रहती बातें, वो समझ में आए कि ना आए, लेकिन बातें समझ में आए कि ना आए याद आती है। और वो निरंतर जो हमारा श्रवण है, एक दिन वैराग्य में ले जाके आपको आत्मानुभव में ले जाता है। धृतराष्ट्र ने सुना, समझ में नहीं आया, कोई चिंता नहीं, लेकिन सुना था, और उसका परिणाम यह हुआ कि वैराग्य होते वो सारा भगवदीय ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो गया। हरि भावनया ध्वस्तः तमः सत्व रजोमलः, उसके अंदर के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सारे गुण समाप्त हो गए, वो निर्मल हो गया, और निर्मल होकर समाधि में चला गया। इसलिए प्राणायाम सबसे पहले व्यास जी महाराज ने कहा, जित श्वासो, वहां धृतराष्ट्र ने पहला काम वहां किया, अपने प्राणों पर नियंत्रण किया उन्होंने। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए, आपको समय निकाल के करना चाहिए, लेकिन समय नहीं निकलता है। सबसे मूल्यवान बात यह है कि आदमी के पास समय है लेकिन समय निकाल नहीं पाता है वो, लेकिन जिसने समय निकाल लिया है ना, और उसके जीवन में बदलाव होगा। इसलिए प्राणायाम हमारे जीवन की बहुत बड़ी चीज है, इसलिए आध्यात्मिक आदमी को प्राणायाम करना ही करना चाहिए। आप पूजा पाठ जप साधना ध्यान, सबसे पहले प्राणायाम का उल्लेख है, सबसे पहले प्राणायाम करो, फिर प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि एक क्रम है, फिर आसन लगाओ, फिर प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये आपके साधना के पांच अंग है। प्राण एजति निश्रितम, वही प्राण तत्व जो परमात्मा तत्व है उसके द्वारा सारी चीजें पैदा हुई। महद्भयम् वज्रमुद्यतम् एतत् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। अब उस प्राणरूप तत्व को जानने का परिणाम क्या है, तो बोले अमृता भवन्ति, आपके जीवन में अमृत की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में अभय की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में विशोक की प्राप्ति होगी। और वो तत्व जो है ना महद्भयम्, अभी थोड़ा आपको डरा रहे हैं, थोड़ा डरा रहे हैं, बोले महद्भयम्, वो जो तत्व है ना वो महद्भय है, भय। आप भगवान से डरते हैं कि नहीं, और आपको भगवान से डरना चाहिए कि नहीं? भगवान से तो बहुत लोग डरते हैं, आदमी को लगता है कि नहीं भाई भगवान बिगाड़ देंगे, ऐसा बोलते हैं लोग, कई बार बोलते हैं कि हमसे ये पूजा पाठ में गलती हो गई तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? देखो भगवान जो है वो भय रूप नहीं है, वो अभय रूप है। आपको भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। यहां जो भय बोला है ना, भय, ये भय भय के अर्थ में नहीं है, ये अनुशासन के अर्थ में। इस दुनिया में जो भी अनुशासन है, ये अनुशासन ऐसा है जैसे मालिक के भय से नीचे सेवक लोग बराबर काम करते हैं, वैसे उस तत्व के अनुशासन में सारी दुनिया के काम चल रहे हैं। इस दुनिया में कितना अनुशासन है, आपका जो सूर्योदय बिल्कुल बराबर, उसका चक्र है, वो सूर्योदय का चक्र है, सूर्यास्त का चक्र है, और वो ये पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, वो कैसे पूनम आती है, कैसे अमावस्या आती है, दिन कैसे आते हैं, रात कैसी आती है, महीने कैसे आते हैं, वर्ष कैसे बनते हैं, और ये बिल्कुल ऋतु आते हैं। पहले आपका जाड़ा आएगा, कौन सा आएगा पहले? हा? आप लोग तो बहुत बड़े ज्ञानी, प्रेमपुर के सत्संगी लोग बड़े ज्ञानी हैं, सचमुच ज्ञानी है, या एक एक सत्संगी लाख लाख के बराबर। हाँ, आपके ये जो ऋतुओं का जो चक्र है ना, वो ऋतुओं का चक्र पहले कौन सा मान लीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, कौन सा पहला? गर्मी पहले, जाड़ा पहले, ठंडी पहले? ठंडी होना चाहिए क्योंकि ठंडी आ रही है। अब ठंडी आ रही तो ठंडी पहले बोल रहे हो, और गर्मी आती तो गर्मी पहले। आपकी कौन सी ऋतु पहले? गर्मी पहले, फिर आएगी बारिश, फिर आएगी ठंडी। ठंडी ये क्या है, आपको आश्चर्य नहीं होता है क्या? इन सारी चीजों को देख करके आपको आश्चर्य नहीं होता है? बारिश के बिना ठंड कहां से होगी, ठंड के बिना? और ये जो तीनों ऋतु है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रलय की ऋतु, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो सृजन के देवता है वो ब्रह्मा है, सृजन की देवता ब्रह्मा है, बारिश, और चारों ओर बारिश ही बारिश, और जब बारिश हो जाती है ना, ये बारिश का समय सृजनात्मक है। इतनी सृजनात्मकता, आप जंगल में जाओ, कीड़े ही कीड़े पता नहीं कहां से आते हैं, एक इंच भी जगह आपको ऐसी खाली नहीं मिलेगी जहां कीड़ा ना हो, और बहुत चित्र विचित्र, ये सृजनात्मक ऋतु है। और ये पशु पक्षी सब अपने बच्चे पैदा करते हैं, कीड़े मकोड़े वो, और वो कैसी अद्भुत लीला, वहां इतने सारे पक्षी पैदा होते हैं, उसको खाने के लिए कीड़े मकोड़े मिलते हैं। और जब आपकी ये ऋतु खत्म हो जाती है तो दूसरी ऋतु कौन सी आती है? ठंडी। ठंडी आती है ना, ठंडी। हाँ हाँ, वो ठंडा हो, चारों और ठंडा ही ठंडा हो गया, और उस ठंडी में आनंद मनाते हैं। फिर जो पैदा हुए आपके चातुर्मास में है वो ठंडी पर आनंद मनाते हैं। फिर और ठंडी के बाद फिर ये ठंडी की जो ऋतु है ना, पोषण की ऋतु है। आपको यदि बहुत अच्छा स्वस्थ बनना है तो आप ठंडी के दिनों में खूब खाओ। ये जितने पहलवान लोग पहलवानी करते हैं ना, ये ठंडी के दिनों में, जब हम बनारस में पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे ठंडी में ओ कड़वा तेल लगा करके पहलवान लोग मालिश करते और खूब डन। इसलिए ठंडी के दिनों में आपको खूब खाना चाहिए, आपकी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होती है उससे। चातुर्मास में आपकी कमजोर हो जाती है जठराग्नि, और गर्मी के दिनों में वो बहुत गर्मी है, यहां खाया नहीं जा रहा है। अब यहां तो एसी है, मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आप गांव में जाके बोलो वो उठा गर्मी बहुत है भाई, ज्यादा नहीं खाना है। और ठंडी के दिनों में आप कितना भी खाओ जब हजम हो जाता है। ये पालन की ऋतु, ये आपका भगवान विष्णु का भाव है, पालन की ऋतु है। और जब गर्मी आती है तो प्रलय, ये भगवान शंकर का तांडव। आप जाओ जंगल में, ओ जिधर देखो उधर एकदम सन्नाटा। आपको एकादा कोई कीड़ा मकोड़ा दिखता है क्या गर्मी में? सब स्वाहा, बड़े बड़े जलाशय समाप्त हो जाते हैं, मछलियां खत्म हो जाती हैं, कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं, झाड़ जितने बड़े बड़े हरियाली से भरे थे वो सब खत्म हो जाए। प्रलय में बदल गई ऋतु, और ये जो प्रलय जो है ना वो किसलिए है? फिर नए सृजन के लिए। मरना भी पैदा होने के लिए है। हमारा जो मरना है ना वो मरने के लिए नहीं है, वो नए जीवन का आधार बनाने के लिए है। आदमी मरता है, मरने से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अच्छा, आदमी को मरना चाहिए कि मरना चाहिए? मरना चाहिए। तो आपको मरना तो चाहिए, नियम है कि आदमी को मरना चाहिए, बिना मरे तो रहता नहीं हो। लेकिन मरने की स्वीकृति देना बहुत जरूरी है। आदमी मरता तो जरूर है लेकिन मरना चाहता है, इसलिए मरता है कि वो यूं मर जाता है? इसलिए आदमी को सोचना चाहिए भैया मरना अनिवार्य है, इसलिए शोक रहित जीना चाहिए। आज भी मरना हो तो ठीक है, मरना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो कोई जरूरी नहीं कि आज ही हम तैयार हो, लेकिन आदमी को हमेशा तैयार रहना हो ठीक है, जब आए तब। क्योंकि मरना जो है नए जीवन का आधार है, ये सृष्टि के जीवन का अभिन्न अंग है। मरे बिना जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। ओ प्रलय आ गया, गर्मी आ गई, फिर गर्मी के बाद फिर सारी चीजें खत्म करती है नए तरीके से सृजन के लिए। ये प्रकृति तैयार करती है प्रकृति को, ये क्या आश्चर्य नहीं है? नए चीजों को पैदा करने के लिए प्रकृति तैयार कर रही है, वही तो प्रलय है। प्रलय का अर्थ क्या है? प्रलय का अर्थ है नई चीजों को पैदा करने के लिए जो प्रकृति व्यवस्था कर रही है, उसी व्यवस्था का नाम प्रलय है। भाई आपने मकान गिरा दिया, क्यों गिरा दिया? अभी नए बनाने की तैयारी चल रही भाई। अब बोलते हैं अरे इतना बढ़िया मकान तोड़ दिया, बोले हाँ हाँ, क्योंकि नया मकान बनाना है, नया ऑफिस बनाना है, वो नए बनाने की तैयारी है, वो तोड़ना, इसलिए तोड़ना ये शोक नहीं है। अच्छा, मकान जब आप नया तोड़ते हैं नया बनाने के लिए तो खुश होते कि दुखी होते हैं? अरे बहुत खुश होते, ओ हा हा, नया मकान बनेगा। इसलिए जब ये शरीर छूटने लगे तो आदमी को डरना नहीं चाहिए, आदमी को भयभीत नहीं होना चाहिए, हाय हाय अब तो मरने वाले हैं। और सत्संगी को तो कभी नहीं, आप सत्संग में हैं तो आपको कभी मरने से डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अभयम अमृतास्ते भवंती। इस तत्व को जानने के बाद व्यक्ति अमृत हो जाता है। अमृत हो जाता है माने वो पीने वाला देवताओं का अमृत बन जाता है क्या? भाई वो अमृत हो जाता है माने वो अमृत हो जाता है, वो देवताओं का पीने वाला गिलास वाला मटके वाला नहीं, अमृत हो जाता है माने अरे वो मरने के भय से ऊपर उठ जाता है। उसके अंदर जो मरने की संवेदना है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा उसका अनुशासन है, अनुशासन है जन्म, अनुशासन है जीवन और अनुशासन है मरना। ये सारी जो दुनिया है ये अनुशासन है, ये भय भय या भय मने भय की तरह परमात्मा का अनुशासन है इस संसार के ऊपर, और इस संसार को बहुत व्यवस्थित चलाते हैं। इसलिए बहुत आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य, महत आश्चर्य। ये भगवान जो दुनिया बनाते हैं और वो चलाते हैं, व्यवस्थित चलाते हैं। एक बार की बात है कि कोई एक व्यक्ति आया अपने देश में और पूरा देश देखा। देखने के बाद किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया आपको इंडिया भारत कैसे लगा। उस आदमी ने बहुत मजेदार बात बोली, उन्होंने कहा कि भारत का बोले ऐसा प्रभाव है कि यहां आने के बाद मेरे को भरोसा हो गया कि यहां भगवान जरूर है। बोले भगवान है जरूर, इसका भरोसा मेरे में जग गया है। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले ओहो, बोले हमारे भारत की एक विशेषता, धर्म प्रधान भारत ने। उसने कहा बात वो नहीं है, उन्होंने कहा कि यहां इतनी अव्यवस्था है और इतनी अव्यवस्था में भी लोग जी रहे हैं, इसका मतलब कि कोई बचाने वाला है। एक बार हम लोग नर्मदा जी गए, 40-50 लोग थे, नर्मदा को पार करके एक आश्रम में जाना था। और जैसे ही हम लोग बोट में बैठे और उसके अंदर पानी भर गया। उस बोट वालों को बोला कि भैया पानी तो निकाल दे, ये तो हमको डुबा देगा। अरे बोले स्वामी जी डरो मत, डरो मत, डरो मत, मकाय को डरो मत, इतने सारे लोग बैठने हैं। और उस किनारे जाते जाते इतना पानी भरा कि हम गए गए डूबे गए डूबे गए। मैंने कहा ये अव्यवस्था, और उसके बाद भी भगवान बचा लेते हैं। इतनी सारी अव्यवस्थाएं, लोगों को चलना नहीं आता है, गाड़ी चलाना नहीं आता है, और उसके बाद भी भगवान आपको बचा लेते हैं। इसका मतलब ये बोले भगवान है। अव्यवस्थाओं को देख करके उसने सोचा कि सचमुच भगवान बचाते हैं, और हमारे देश में ऐसा हो तो नमो नमो। इसलिए यहां पर कहते हैं वो भयरूप जो परमात्मा है वो अपने अनुशासन में संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसको चलाते हैं, और अंत में प्रलय के द्वारा इसको मिटाकर पुनः सृजन के लिए तैयार करते हैं। महत भयम वज्रमुद्यंतम यह, और बोले एतद विदुः, जो इसको जानता है क्या होता है, बोले अमृतास्ते भवन्ति, वो अमृत हो जाते हैं। आप एक बार भगवान को जान लेंगे ना, भगवान को एक बार जान लेंगे तो आपके अंदर अभय प्राप्त होगा। इसका प्रयोजन है, सत्संग का प्रयोजन है संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाना। अब इन्होंने अनुशासन के लिए एक श्लोक बताया आपको कि कैसे अनुशासन होता। भयात अस्य अग्निस्तपति, भयात तपति सूर्यः, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। समय पूरा हो गया। ओम नारायण।